Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार संत उस्मान अपने शिष्यों के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। एक गली से जब वो गुजर रहे थे तो उस मकान की मालकिन ने राख से भरा जो टोकरा था बाहर फेंका। जान करके तो नहीं फेंका, लेकिन अपने घर की छत से जब फेंका तो संत उस्मान के ऊपर पूरी राख आ गिरी। उनके कपड़े बहुत गंदे हो गए। संत उस्मान ने दोनों हाथ अपने ऊपर उठाए और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। जब वो आगे बढ़े तो शिष्यों ने पूछा कि आपको तो मकान मालकिन से शिकायत करनी थी कि कम से कम देख करके तो राख फेंका करें, आपने इसके बनिस्पत भगवान को शुक्रिया अदा किया। तो संत उस्मान जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने शायद इतने पाप किए हैं कि मुझे तो आग में जलाया जाना चाहिए, आग फेंका जाता तो शायद मेरे पाप नष्ट होते, लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर केवल राख ही फेंकवाई। मित्रों, जो साधना करते हैं, जो तप करते हैं, कितना संयम उनके जीवन में आ जाता है, कितनी शांति आ जाती है, कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि एक आम व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है और आए दिन ऐसी होती रहती है घटनाएं, तो हम कितने आग बबूला हो जाते हैं। रास्ते में भी आपने देखा होगा, ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई हमसे आगे निकल रहा है, किसी ने हल्का सा ठोक दिया हमारी गाड़ी को, तो हम कितने आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन यदि ऐसी शांति, धैर्यता, शीतलता और साथ ही सामने वाले के लिए बहुत पॉजिटिव यदि होंगे तो सचमुच बातें कितनी सहज और सरल हो जाती है ना। शायद योग, तपस्या, साधना हमें यही सिखाती है और इसीलिए इसी पे लगातार भ्राता जी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम ये ना सोचें कि शायद हिमालय में जाके या जंगल में जाके ही किया जाने वाला जो तप है वो तप है। नहीं, जीवन भी एक तप है। अपने आप को सुधारना, श्रेष्ठ बनाना, अच्छाइयों को धारण करना, ये भी तो महान तप ही है ना। इसीलिए लगातार भ्राता जी से इसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए आज इस चर्चा को भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं उनके अभिनंदन के साथ। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। भ्राता जी, एक सुंदर परिवर्तन देखने में आता है जो आध्यात्मिक लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म तो सबको ईश्वर से जोड़ता है, उनका पूरा ही जीवन प्रेरक होता है लोगों के लिए और ऐसी शांति, ऐसी पॉजिटिविटी सहज उनके जीवन में आ जाती है।
बिल्कुल, वो सरल चित्त होते जाते हैं, निर्मल होते जाते हैं और किसी भी घटना को बहुत सीरियसली, बहुत बड़े रूप से नहीं लेते। उनकी एक मेंटेलिटी हो जाती है कि बड़ी बात को भी छोटा कर देना। अनेक लोग इस संसार में ऐसे हैं जो छोटी बात को बड़ा कर देते हैं, तूफान बना लेते हैं और फिर उस तूफान में खुद भी उड़ने लगते हैं, बह जाते हैं, बिल्कुल शांति खो देते हैं। लेकिन अच्छे व्यक्ति की ये पहचान है कि वो इतना सरल चित्त हो कि बड़ी से बड़ी बात को छोटा करके आगे बढ़े। यही मनुष्य के उत्थान का, उसकी प्रोग्रेस का, सफल होने का एक सुंदर फॉर्मूला है। जो व्यक्ति बातों को पकड़ कर बैठता है, जो बातों को बड़ा करता है, उसकी शक्तियाँ उसमें लग जाती हैं, सफलता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, सफलता उसके सामने से गुजर जाएगी और चली जाएगी। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है ये साधना तो सभी करें कि अपने चित्त को सरल बनाते चलें। मुझे एक बात याद आ रही थी ये आख्यान सुन के, शिव बाबा ने ईश्वरीय महावाक्यों में हमें एक बहुत सुंदर बात कही थी, वेस्ट को बेस्ट में बदलो। जैसे विज्ञान की साधनों के द्वारा लोग फैक्ट्री लगाते हैं, अब देखो कागज बनता है, कागज का अगर आप रॉ मटेरियल देखो तो आप हैरान होंगे कि इन सब से कागज बनता है। हमारे सामने आ जाता है, कहीं सफ़ेद है, कहीं वो ब्राउन जैसा है, उससे भिन्न भिन्न काम हो रहे हैं। ये प्लेट्स बनती हैं प्लास्टिक की, न जाने किस किस से बनती है, सुंदर डिजाइंड होके हमारी टेबल पर आ जाती हैं। तो मनुष्य जो विज्ञान का भी जन्मदाता है, वो भला अपने वेस्ट विचारों को बेस्ट क्यों नहीं बना सकता। तो अपने एटीट्यूड्स को, अपने विचारों को, अपने कर्म करने कला को, अपने कर्मों को वेस्ट से बेस्ट में बदल देंगे तो सचमुच जीवन बड़ा सुहाना हो जाएगा।
सचमुच, और ये भी बहुत बड़ा आर्ट है जो सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि कल प्रताप जी, मैंने आपको कहा था कि गांधी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात तप के लिए कही थी, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा है गांधी जी ने कि तपस्या जीवन की सबसे बड़ी कला है। अब इस बात पे मुझे लगा कि आपसे जरूर प्रकाश चाहूं कि ये तपस्या जीवन की सबसे बड़ी कला है, ये कैसे है? ये बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए।
और मैं इसमें और भी जोड़ दूं कि ये कला आ जाने से बाकी सभी कलाएं स्वतः ही जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि तपस्या कला इसलिए है क्योंकि इसमें मन और बुद्धि को स्थिर करना होता है, और मन बुद्धि को स्थिर करना ये सर्वश्रेष्ठ कला है, क्योंकि इसमें मनुष्य को बहुत विशाल ज्ञान के भंडार की जरूरत होती है। तो ये सत्य है कि ज्ञान का प्रयोग करते करते एक साधक अपने मन और बुद्धि को परमात्म स्वरूप पर स्थिर कर देता है। भगवान के शब्दों में इस तरह है, मैं रिपीट करूंगा, अपने मन को जहां चाहे, जितना समय चाहे, जब चाहे, जिस स्वरूप पर चाहे स्थिर कर देना, ये सबसे बड़ी कला है। तो महात्मा जी ने ये बिल्कुल सत्य कहा कि इस कला में हम प्रवीण होते चलें तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी।
तो भ्रता जी, जैसे आपने कहा कि तपस्या बड़ी कला है, लेकिन साथ साथ आपने ऐड किया कि इससे सारी कलाएं आती जाती हैं, तो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति की ये चाहना होती है कि कोई ना कोई विशेष गुण उसके अंदर हो, कोई ना कोई विशेष शक्ति उसके अंदर हो, कोई ना कोई विशेष विशेषता उसके अंदर हो। तो यदि हम किसी विशेष कला को, विशेषता को, गुण को अपने अंदर लाना चाहते हैं तो किस प्रकार की विशेष तपस्या की जाए?
रोज सवेरे उठकर एक 21 दिन का प्रोग्राम बना लिया जाए। किसी को इस कार्य में 21 दिन में सफलता हो जाएगी, लेकिन अगर उस कला का स्वरूप बड़ा है तो 3 मास। तो सवेरे उठकर 1 घंटा बहुत अच्छा योग अभ्यास किया जाए और उस कला का आह्वान किया जाए। एकाग्रता के माध्यम से ये कलाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं। जो भी कला चाहिए, मान लो एक व्यक्ति गाने की कला में प्रवीण होना चाहता है, ये एक बहुत सुंदर कला है। अब उसको कुछ बाधाएं आ रही हैं, अनेक तरह की बाधाएं उस फील्ड में भी होती हैं, तो सवेरे उठकर 4 बजे उठकर बहुत अच्छा मेडिटेशन करे 1 घंटा, और अब इस कला का आह्वान करे। किन शब्दों में? कि मैं गाने की कला में परफेक्ट हूँ, मैं इस कला को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास ये कला पूरी तरह आ गई है। ये तरीका है कला के आह्वान का, तो वो कला इमर्ज होने लगेगी। क्योंकि सत्य यही है कि मनुष्य के बुद्धि में, उसके ब्रेन में ये सभी कलाएं किसी ना किसी लेवल तक समाई रहती हैं। वो इमर्ज हो सकती हैं और फिर उनका लेवल हम अपने अभ्यास के द्वारा बढ़ा लेते हैं। कलाएं बहुत सारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक कला है, कर्म करना भी एक कला है, तो कर्म कराना भी एक कला है, इवन भोजन बनाना भी एक कला है, अपने अपने कार्यों में परफेक्ट होना। मान लो एक व्यक्ति सारा दिन बहुत काम कर रहा है, काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो अपने कार्य को एंजॉय कर रहा है, तो ये उसकी कला है। वो ऐसे ढंग से कार्य कर रहा है कि उसको कोई टेंशन नहीं है, वो सहज भाव से सब कार्य पूर्ण करता जा रहा है, ये कला है। इन सभी कलाओं का आह्वान हम योग अभ्यास से, विशेष रूप से अमृत वेले कर सकते हैं। और जो हमारे परम पिता हैं, उनके ये महावाक्य हैं कि उस टाइम उनका स्वरूप भोलानाथ का होता है, सहज राजी होकर सब कुछ प्रदान कर देते हैं। हम मांगेंगे नहीं उनसे, लेकिन उनसे बुद्धि योग लगाएंगे और अपना संकल्प रखेंगे मुझे ये कला की आवश्यकता है, तो उधर से भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनसे भी हमें उन कलाओं को जीवन में धारण करने में एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी।
तो प्रताप जी, इसका क्या स्वरूप हो? जैसे आपने कहा कि अमृत वेले परमात्मा भी देना चाहते हैं, और वैसे भी हमारे अंदर वो कलाएं तो हैं जिन्हें जागृत किया जा सकता है एकाग्रता के माध्यम से। कैसे? मान लीजिए 1 घंटे या आधे घंटे हम योगाभ्यास कर रहे हैं, तो क्या संकल्प उस समय रखा जाए ताकि उन्हें करने के बाद फिर हम आह्वान करें तो वो सहज जागृत हो जाएं?
हमें परमात्मा से उस टाइम शक्तियां प्राप्त करनी है
जी।
इसलिए अपने को किसी अच्छे स्वमान में स्थित करके, जैसे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, फिर परमात्मा से शक्तियों के वाइब्रेशंस प्राप्त करें और फिर शक्तियों का आह्वान करें। और जब उस कला को वो करने लगें, मान लो एक म्यूजिशियन है, अब उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तो वो ये संकल्प कर ले, ये कला मेरे पास है, मैं अपनी इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने को एंजॉय करूँगा, आप सब भी एंजॉय करेंगे, मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो ये हमारे अंदर जो वो कला जागृत हुई थी वो प्रैक्टिकल में कार्य करने लगेगी।
बिल्कुल, मतलब ये एक सुंदर विधि हो सकती है। और 21 डेज में प्रताप जी क्या ये पूरी तरह जागृत हो जाएगी?
हाँ, अगर मनुष्य बहुत अच्छी तरह योग अभ्यास करेगा, अन्यथा उसको थोड़ा 3 मास या लंबा समय थोड़ा लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति उस कला में पहले से कितना इंटरेस्टेड था। कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को गीत गाते देखकर
खुद सोचते
मैं भी गाऊं। वो उनकी कमाई बहुत हो रही, क्रिकेट खेल रहे लोग, अरे वो तो करोड़पति बने हुए हैं, मैं भी यही करूं। लेकिन उनमें वो टैलेंट है नहीं, उनको थोड़ा लंबा समय लग सकता है। लेकिन किसी में वो टैलेंट है, थोड़े लेवल पर है, उनको बहुत जल्दी सफलता होगी।
बिल्कुल, लेकिन होगी जरूर,
होगी
जितना
जरूर।
भी वो वक्त ले भले, लेकिन ये सफलता तो उन्हें प्राप्त होगी होगी। दादा जी, कई बार तपस्या से जुड़ी हुई जब बात चलती है, ये कहा जाता है कि जो योग साधना करते हैं उन्हें परमात्मा से इंट्यूशंस भी प्राप्त होते हैं, और शायद इसकी जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है कि हमें ये करना है या ये करना है या ये करना है। दिन भर में कई अवसर ऐसे आते हैं जब हमें एक सही निर्णय लेने की जरूरत होती है, और ऐसे में कई बार हम कंफ्यूज्ड होते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद परमात्मा से कुछ ऐसा इंट्यूशन मिल जाए। तो ये इंट्यूशन हमें सही सही मिले, ताकि हम सही सही जगह इन्वेस्ट करें और हमें सफलता मिले, क्या ऐसी संभावना है?
बिल्कुल संभावना है, और सवेरे उठते ही हम बहुत अच्छा योग अभ्यास करें। देखिए, ये निर्णय शक्ति हमारी बुद्धि के पास है, और बुद्धि के निर्णय परफेक्ट तब होते हैं जब मन हमारा ठीक स्थिति में हो। मान लो किसी का मन टेंशन में है, किसी का मन बहुत विचलित है, आज परेशान है, और वो निर्णय लेना चाहता है कुछ, तो गलत हो सकता है। उसका निर्णय उसके विचारों के आधार से प्रभावित हो सकता है। उसे आज गुस्सा आया हुआ है तो कुछ भी गलत निर्णय ले सकता है। इसलिए चित्त को सवेरे शांत किया जाए और 7 बार अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर परफेक्ट है, आज सारा दिन जो भी मैं निर्णय लूंगा वो बड़े कल्याणकारी होंगे, बड़े यूजफुल होंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और फिर कोशिश ये रखें कि चित्त शांत रहे, और जब विशेष निर्णय लेना हो तब अपनी बुद्धि एक बार फिर अपने परमपिता से, सुप्रीम से जोड़ दें, पूछे नहीं उससे कुछ, केवल जोड़ें, उसकी फीलिंग्स प्राप्त करें, उसके वाइब्रेशंस प्राप्त करें, एक प्रॉपर डिसीजन बुद्धि में स्वतः ही इमर्ज हो जाएगा।
लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है ना, जब व्यक्ति के पास सिचुएशन कोई आ गई है, भयावह है, और उस समय वो इतना हलचल की स्थिति में होता है कि मन उसका शांत नहीं होता, स्थिर नहीं होता, एक पे भी एकाग्र नहीं होता, तो उस समय फिर कैसे ये जो सही निर्णय है वो किया जाए?
इसमें वो मनुष्य जो बहुत सरल चित्त है, इसमें बहुत सफल होता है। सवेरे ही ये अच्छे संकल्प करने के साथ उस टाइम भी थोड़ा सा ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में रखना चाहिए, सारा ही दिन भाई मुझे अपने कार्यों को एंजॉय करना है। और वो समस्या कभी कभी कार्यों की नहीं होती, मान लो कर्म क्षेत्र तो उसका फैक्ट्री में है, लेकिन लड़ाई घर से होके आ गई है, पत्नी से आए लड़ाई होके आई है, तो उसका इफेक्ट उसके निर्णय पर आता रहेगा, क्योंकि बार बार उसकी जो मन और बुद्धि है उधर खींचती रहेगी, उसने आज मुझे ये बोला, ये सुधरती नहीं है, इसको कैसे ठीक करूं और क्या करूं मैं, उसकी जो परेशानी है वो उसकी विवेक शक्ति को प्रभावित करेगी। इन सब को ज्ञान के बल से हल्का कर लेना इसकी परम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बातें तो सबके सामने आती हैं, सदा ही सबका मन शांत या एक रस या खुशी में,
निर्णय भी उसी समय लेना,
उसी टाइम लेना होता है, तो उस टाइम अपने को या तो बिल्कुल एकांत में करें, शांत करें थोड़ी देर, सभी विचारों से अपने को मुक्त करें, कुछ अच्छी ईश्वरीय ज्ञान की बात को याद करें या संकल्प करें कि चलो इन बातों पर मैं पीछे चिंतन करूंगा, अब मुझे इस सुंदर बात पे निर्णय लेना है, तो अपना बुद्धि ऊपर जोड़ें, थोड़ा थोड़ा भी जोड़ें, और संकल्प भेज दें बाबा को, शिव बाबा को, कि अब मुझे इसमें यथार्थ निर्णय लेना है, आपकी मदद की आवश्यकता है, तो आने लगेंगे इंट्यूशंस।
बिल्कुल प्रताप जी, कई बार कई लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम कैसे समझें कि ये इंट्यूशन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संभवतः मैं भी वही सोच रहा हूँ तो मेरे मन की भी उपज हो सकती है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि इंट्यूशन क्या है और मेरे मन की उपज क्या है, इसे कैसे समझा जाए?
इसलिए मैंने इसका एक बहुत अच्छा उत्तर पहले ही दिया था कि हम शिव बाबा से कुछ भी पूछेंगे नहीं, बाबा ये है वो है क्या है, नहीं तो वो हमारे मन के विचार बार बार उसमें बाधक बनेंगे। हम केवल उनसे बुद्धि योग जोड़ेंगे और अपने चित्त को शांत करेंगे। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है, जैसे ही मन शांत होगा, बुद्धि में वो शक्ति पहले से ही है, वो निर्णय उसमें पहले से ही भरे हुए हैं, वो जागृत हो जाएगी। तो हम बुद्धि योग शिवबाबा से जोड़कर अपने चित्त को शांत करें, और कभी कभी जस्ट एक संकल्प छोड़ दें ऊपर, फिर उस पर ज्यादा सोचेंगे नहीं, हमारे ही मन में वो चीज आएगी, बुद्धि में आएगी, तो वो इतनी सुंदर तरीके से आएगी कि हमें उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक ही बात आ जाएगी, ये प्रैक्टिकल में अनुभव होगा।
और यदि ये बात ना आ रही हो फोर्सफुली
तो उस टाइम उसे छोड़ देना चाहिए। और विधि होती है बहुत अच्छी जो लोग अपनाते हैं, दो चिटकियां बनाओ कागज की, लिखो दोनों पर हाँ या ना या जो जो बातें हों, और दोनों को गोल कर दो और डाल दो, और फिर बाबा की याद में बैठो एक मिनट, और फिर आंखें बंद करके उनमें से एक उठा लो, इस विश्वास के साथ के जो आएगा इट विल बी परफेक्ट, बस फिर उसे फॉलो करो,
फिर वही किया जाए। हाँ। और यदि उसके बाद यदि रॉन्ग यदि कुछ होता है तो?
नहीं, ऐसा होता नहीं, बहुतों के अनुभव मैंने देखे हैं
जी,
कि वो ठीक होते हैं बिल्कुल। हाँ। बहुत लोग, कईयों को कंफ्यूजन हुआ
जी,
क्योंकि
जी,
उनके अपने मन के विचार थे नहीं,
वही बात, इसीलिए
वो चिटकी आ रही हाँ की
जी, जी,
अब उन्होंने वो हाँ नहीं फॉलो किया, ना को फॉलो किया, तो गड़बड़ हो गई, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि ना जो कुछ आया था वो ऊपर से आया था।
सबसे अच्छा तरीका हो गया फिर कि यदि हम खुद ही ऐसे जुड़ करके एक इंट्यूशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, तो हाँ या ना की स्लिप रख के फिर हम कितने एक घंटे योग करके फिर
नहीं, नहीं, एक घंटे की जरूरत नहीं, 10 मिनट करें बस,
उसके बाद जो भी आता है हम उसे फॉलो करें। पता जी, कल एक चर्चा हमारी हो रही थी जो आप कह रहे थे कि कम से कम 4 घंटे का योग तो बहुत जरूरी है, ताकि हम ये जो मन में जो उठने वाले अलग अलग प्रकार के भाव हैं, विकार के भाव हैं या संसार का आकर्षण है, उससे मुक्त रह सके। तो इस 4 घंटे को आप सबको दृष्टि में रखते हुए, जो गृहस्थ में हैं, कार्य कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, सबको दृष्टि में रखते हुए कैसे डिवाइड करें?
एक तो हर साधक को जिसको जीवन में सफल होना है या ये कलाएं प्राप्त करनी है या कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग अवश्य करना चाहिए
जी।
करना 1 घंटा चाहिए, पर मान लो कोई ग्रस्त में ज्यादा व्यस्त है तो आधा घंटा तो इट इज ए मस्ट।
तो कौन सा समय आप देंगे?
4 बजे से
जी,
4 से 4:30 करें, 4:45 करें, समय हो तो 5 तक करें, बैठ कर करें, फिर घूम फिर के करें, एक तो ये करना चाहिए। दूसरा, हमारा इवनिंग मेडिटेशन बहुत सुंदर होता है, जो अपनी दिनचर्या में मैनेज कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटा शाम को 6:30 से 7, 7 से 7:30 ये योग अभ्यास करना चाहिए। और तीसरा बहुत सुंदर समय होता है हमारा सोने से पहले का, मिनिमम 15 मिनट, आधा घंटा हो जाए तो बहुत सुंदर, क्योंकि इस आधे घंटे योग में हम पूरे दिन के जो कुछ भी है, गंदगी, विचार, निगेटिव, टेंशन, उस सब को इसमें समा देंगे
जी।
हम ऐसा अच्छा योग करें कि वो सब चित्त से उतर जाए, चित्त शांत हो जाए, और हम एक सतोप्रधान नींद का आनंद लें। तो लगभग 2 घंटे या 1.5 घंटे बैठकर करना चाहिए, इससे ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है। और जो बहुत अच्छी साधना करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उनके पास ऐसी उनकी दिनचर्या है, वो बीच में 10-10 मिनट बैठ सकते हैं 3-4 बार, कोई भी अपनी दिनचर्या को मैनेज कर लें
जी।
जिनके पास योग कक्ष बने हुए हैं वो योग कक्ष में बैठें, अन्यथा अपने अपने स्थान पर बैठें, ऐसा भी करें। लेकिन मुख्य बात होगी कर्म योग की, जिसमें मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, मैं आत्मा यहाँ हूँ, मैंने इस तन में प्रवेश किया हुआ है, ये देह अलग, मैं अलग, ये मेरा मीडियम है, ये फीलिंग, चिंतन भी हो और विजुअलाइजेशन भी हो, कभी किसी अच्छे स्वमान का अभ्यास, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे परमात्मा प्राप्ति हुई है, उसने मेरा श्रृंगार किया है, उसने मुझे शक्तियाँ और वरदान दी हैं, इस तरह का चिंतन। कई लोग इस चीज़ को कम जानते हैं और कम समझते हैं या कम अभ्यास करते हैं, चिंतन बीच बीच में यदि ये 2-3 मिनट सुंदर चिंतन हो जाए तो और सारा जो व्यर्थ है या टेंशन है वो समाप्त हो जाता है और हमारी स्थिति बहुत सुंदर रहती। ऐसे बीच बीच में अभ्यास कर लिया, ऊपर से सर्वशक्तिमान की किरणें पड़ रही हैं, कभी अभ्यास कर लिया मैं तो पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इस संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूँ। कभी अभ्यास कर लिया, ये सब आत्माएं हैं, ये संसार कितना सुंदर खेल है, अब ये खेल पूर्ण हो रहा है, हम सब आत्माएं उड़कर वापस घर पहुंचेंगी। ऐसे 10 अभ्यास चुन लिए जाएं और इनका अभ्यास थोड़ा थोड़ा भी, देखिए 1 मिनट अगर अच्छा अभ्यास किया जाता है, अगर 1 मिनट किसी को एकाग्रता हो जाए तो 1 मिनट का इफेक्ट आधा घंटा चलेगा। तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे कर्म क्षेत्र पर भी, सफलता के लिए भी और खुद की सुखद फीलिंग्स भी। तो ऐसे एक प्लान बनाया जाए। कई लोग कर्म वाइज प्लान बना सकते हैं, भाई मुझे सारे दिन में 4 तरह के कार्य करने हैं जॉब टाइम में, अब मैं 4 तरह के कार्यों में 4 तरह के अभ्यास करूंगी, वो फिक्स कर दें। मैं उदाहरण दूं, मान लो एक व्यक्ति जो ऑफिसर है लेकिन उसका कॉन्टैक्ट पब्लिक से है, रोज 50 लोग उसके पास आएंगे, उससे कुछ पूछेंगे, कुछ काम कराएंगे, वो उनको रेस्पॉन्स देगा, उनके एप्लीकेशन लेगा या कुछ और करेगा। अभी उनके पास लोग आ रहे हैं, अब वो लक्ष्य बना ले कि हर व्यक्ति जब मेरे सामने आएगा मैं उसे पहली दृष्टि में आत्मा देखूंगा और खुद के लिए अभ्यास करूंगा, आज का स्वमान मेरा है कि मैं विजयी रतन हूँ, हर व्यक्ति के कॉन्टैक्ट करने से पहले मैं इसे याद करूंगा, और फिर बीच में ही या पहले ही 5 सेकंड के लिए भी अपना कनेक्शन सुप्रीम से जोड़ूंगा, उसके वाइब्रेशंस लूंगा। तो 50 बार वो ये अभ्यास करेगा, उसका दिन ऐसा आनंदित होगा कि उसको लगेगा वो 4 घंटे नहीं सारा दिन ही योग युक्त था, इसको एंजॉय करेगा, उस सरलता आ जाएगी। मान लो कहीं बीच में कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आता है उल्टी सुलटी बात करता है, कहीं टेंशन की बात हो जाती है, ये भी रोज होगा, तो इस अभ्यास से वो चीजें सहज हल हो जाएगी, ये दूसरा बड़ा फायदा होगा। एक डॉक्टर है, अब उसके पास शायद दिन में 40 पेशेंट आ रहे हैं, वो बहुत बिजी है, देखना है, उनकी जांच करनी है, उनसे बात करनी है, वो बहुत कुछ बोलते हैं, उनका सुनना है, कभी व्यक्ति कम सुनना चाहता है और वो ज़्यादा बोलते हैं तो इरिटेट हो जाता है, ये सब स्थिति आती है। तो मैं अपने मेडिकल के प्रोफेशन वालों को ये सिखाता हूँ, आप भी अभ्यास करो। एक पेशेंट आया बहुत अच्छी तरह शांत में, बहुत स्माइलिंगली उससे मिलो, हाँ आत्मा देखो पहली दृष्टि में, बोलो भाई क्या समस्या है, क्या बीमारी है। इसी बीच में अभ्यास कर लो, मैं एक महान आत्मा हूँ, कोई भी स्वमान, और जब प्रेस्क्रिप्शन लिखना है अब उसकी सुन ली, अब जब लिखना है एक 5 सेकंड ऊपर से कॉन्टैक्ट करो, हाँ ये लिखना है, प्रॉपर दवाई लिखी जाएंगी, उससे उसको बहुत फायदा होगा, को अच्छे बोल बोलो ये दवाई खाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हें साथ देगा, तुम्हारा बिल्कुल ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ, एंजॉय करो, ब्लेसिंग्स भी दे दो, देखो कितने लोग उसके पास आते हैं, ठीक भी हो जाएगा उसकी बढ़ेगी कितनी,
क्योंकि डॉक्टर की बात तो बहुत ही सिंसियरली वो लेता है, और यदि डॉक्टर कह दे कि जल्दी ठीक हो जाओगे तो सच में ठीक ही हो जाएगा।
एक बहन बहुत परेशान थी, उसको यहाँ कुछ सफेद सफेद से दिखने लगे, अरे मुझे तो लगता है ये दाग होने लगे, वो जो आजकल होते हैं ना सफेद दाग, ये क्या हो जाएगा मुझे। मैंने कहा ऐसे तुम क्यों घबरा रही हो, डॉक्टर है हमारे यहाँ, उनको दिखाओ। डॉक्टर को दिखा, कहा तो कुछ नहीं, ये तो होते रहते हैं, मिटते रहेंगे, कुछ नहीं, ये वो चीज नहीं है। अरे उस दिन से वो हैप्पी, ये तो कुछ नहीं है। तो डॉक्टर्स नेक्स्ट टू गॉड लोग कहते हैं और उनकी बात में सबको विश्वास होता है। तो ब्लेसिंग दें, इसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, खुशी देंगे, खुशी मिलती रहेगी, और शाम तक 50-100 पेशेंट को देखने के बाद भी ऐसा लगेगा वी आर वेरी फ्रेश, बहुत एंजॉय किया आज अपने कार्य, बहुतों को सुख मिला है आज।
तो मेहता जी मतलब मूल रूप से ये हो गया कि 4 घंटे को, जैसे सुबह आपने कहा कि बैठ करके योग करें, अमृत वेला बहुत सुंदर समय है, साथ ही नुमा शाम का जो समय है उस समय भी बैठ के करें, और रात को सोने से पहले और दिन में बीच बीच में 5-5 मिनट 10-10 मिनट जैसे आपने अभ्यास कहे हैं अपने कार्य के अनुसार बांट लिए जाए। मेहता जी विशेष करके हमारे भी जो सहयोग बैंक वाले हैं समाधान परिवार के, जो हमारे भाई बहने हैं, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे नियमित रूप से योग कर रहे हैं और बहुत सुंदर रिजल्ट हैं, वो हमें फोन करते रहते हैं, मेल करते रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि ये सुबह 6 और शाम को 6 10-10 मिनट करते रहे या कुछ एडिशन करना चाहेंगे?
नहीं, बहुत अच्छी बात है, सवेरे का 6 बजे का टाइम बहुत सुंदर, शाम को 6 बजे का टाइम भी बहुत सुंदर, जो घर लेट आते हैं वो 7 बजे करें और 10 मिनट डिवोट करें संसार के लिए। देखिए संकल्प ऐसे ही शुरू कर दें, मैं पूर्वज हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है, मुझे तो सारे संसार को सुख देना है, बस इस फीलिंग को जागृत करके फिर योग अभ्यास करके वाइब्रेशंस फैलाएंगे, शिव बाबा से आ रहे हैं, मुझसे संसार में फैल रहे हैं, तो ये 10-10 मिनट की फीलिंग इतनी सुखद होगी, हमें लगेगा हमारे द्वारा बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो रहा है, क्योंकि हो सकता है करोड़ों लोगों को हमारी मदद मिल जाए और हम समझ सकते हैं कितना बड़ा पुण्य होगा। और इस पुण्य का प्रभाव जब रिटर्न होगा हम पर, तो वो हमारे जीवन को कितना आनंदित करेगा। तो हमारे सभी भाई बहने इस कार्य को सच्ची लगन से, सच्चे मन से प्रतिदिन करें। टाइम कभी चेंज हो सकता है, कभी घर में गेस्ट आ गए, कभी कोई बात आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, बच्चों के साथ स्कूल जाना पड़ा, दे कैन चेंज देयर टाइमिंग, बट करना है।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, आज भी सुंदर हमें प्रकाश मिला है कि कैसे हम 4 घंटे भी योग करें और साथ ही कैसे तपस्या एक कला है और सभी कलाओं का विकास करने वाला है। सुंदर प्रकाश के लिए व्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों कितनी सुंदर बात है ना, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी, महात्मा गांधी जी का एक वाक्य कि तपस्या सबसे बड़ी कला है, और भ्राता जी ने जो ऐड किया कि इस तपस्या से ही हमारे अंदर सारी कलाओं का विकास होता है, और तपस्या अर्थात सहज भाव से हम उस परमात्मा का ध्यान करें, योग करें, जब उस सर्वशक्तिवान उस परम चित्रकार से हमारा संबंध जुड़ जाता है तो हमारे जीवन में गुण शक्ति और विशेषताएं स्वतः ही जागृत होती चली जाती हैं, और यदि हम चाहें किसी विशेष कला का विकास तो उसका भी आह्वान किया जा सकता है। और कल जैसे हमारी बात हो रही थी कि कैसे 4 घंटे योग करें, क्योंकि भ्राता जी कह ही रहे थे कि कम से कम 4 घंटे योग तो चाहिए, तो आज अपनी दिनचर्या में कैसे उसे शामिल किया जा सकता है, उस पे भी हमें सुंदर प्रकाश प्राप्त हुआ है। तो इन सभी को अपने जीवन में शामिल करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम साधना के पथ पे आगे बढ़ते हैं, योग के पथ पे आगे बढ़ते हैं, तो सचमुच जीवन बहुत सुखद और आनंदित होता चला जाता है। कल एक विशेष चर्चा हम लोग करेंगे भ्राता जी के साथ, क्योंकि आपको जान के खुशी होगी कि भ्राता जी को ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में योगी राज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन साधना से जुड़ा रहा है, तपस्या से जुड़ा रहा है। तो उन्होंने अपने जीवन में कैसी साधना की है और किस प्रकार से आने वाले विघ्नों को दूर किया है, कल का विशेष एपिसोड उनके अनुभवों पर केंद्रित रहेगा, इसीलिए आप कल भी हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।